नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं महादेवी वर्मा के निबंध भाषा का प्रश्न। दोस्तों, हम अपना जीवन भाषा में व्यतीत करते हैं, भाषा में सोचते हैं, भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, दुनिया की सब चीज़ों की बातें भाषा में ही करते हैं। लेकिन हम भाषा के बारे में कितनी बात करते हैं, भाषा पे हम कितना ध्यान देते हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। लगभग हर साहित्यकार ने, चाहे वो वाल्मीकि हों, चाहे कबीर हों, चाहे ज्योतिबा फुले हों, प्रेमचंद हों, भारतेंदु हों, या विदेशों के भी साहित्यकार हों, प्रत्येक साहित्यकार ने भाषा के ऊपर विचार किया है। भाषा का रूप भी बदलता रहा है और साहित्यकारों ने भाषा को परिष्कृत भी किया है। ये सही है कि साहित्यकारों का काम भाषा के बिना नहीं चल सकता। मनुष्य के निर्माण में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। जितना भी सांस्कृतिक विकास हुआ है, उस सब का माध्यम भाषा ही रही है। प्रस्तुत है दोस्तों भाषा का प्रश्न। मानव समाज की सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है भाषा। मानव की सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत भी ध्वनि संकुल है तथा मानवेतर जीव जगत को भी अपनी सुखद दुखद जीवन स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त हैं। चेतन ही नहीं, जड़ प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। वज्रपात से लेकर फूल के खिलने तक ध्वनि के जितने कठिन कोमल आरोह अवरोह हैं, निदाघ के हरहराते बवंडर से लेकर वासंती पुलक तक लय की जो विविधतामयी मूर्छना है, उसे कौन नहीं जानता। पशु पक्षी जगत के सम विषम स्वरों की संख्यातीत गीतिमालाओं से भी हम परिचित हैं, परंतु ध्वनियों के इस संघात को हम भाषा की संज्ञा नहीं देते, क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति तथा बोध दे सके। मानव कंठ को परिवेश विशेष में जीवन अभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियाँ दाएँ भाग में प्राप्त हुई थी, उन्हें उसने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया। उसने अपनी जीवन अभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे शब्द संकेतों में परिवर्तित कर लिया जो विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु को ही नहीं, अशरीरी भाव और बोध को भी रूपायित कर सके। और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक संस्कार तथा बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार संग्रंथित किया कि वे प्रकृति तथा जीवन के क्षण क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्सर निरंतरता देने की रहस्यमय क्षमता पा सके। मनुष्य की सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा ही होती है। वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार का आधार है, क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर संबंधों को संग्रंथित करने में भाषा एक स्निग्ध किंतु अटूट सूत्र का काम करती है। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय रहता है जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि तक विस्तार देने में समर्थ है। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अंतर्जगत के घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता चलता है, उसी प्रकार उसकी भाषा असंख्य जटिल सरल अंतर बाह्य प्रभावों में गल ढलकर परिणति पाती है। कालांतर में हमारा समग्र अंतर्जगत, हमारी संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द संकेतों से इस प्रकार संग्रंथित हो जाती है कि एक शब्द संकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने की शक्ति पा जाता है। भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न है तो आश्चर्य की बात नहीं। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है, परंतु अपनी समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है, ध्वनि का ज्ञान आत्मा अनुभव से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। शैशव में शब्द हमारे लिए ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जावें तो हम संभवतः बोलना न सीख सकें। अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मा अनुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है, जो समष्टि भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। इसी से पाणिनि ने कहा है, आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनोयुक्त विवक्षया। आत्मा बुद्धि के द्वारा सब अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है। मानव व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है और यह प्रभाव भिन्नता का कारण हो जाता है। परंतु भाषा संबंधी बाह्य भिन्नताएं पर्वत की ऊंची नीची अनमिल श्रेणियां न होकर एक ही सागर तल पर बनने वाली लहरों से समानता रखती हैं। उनकी भिन्नता समष्टि की गति की निरंतरता बनाए रखने का लक्ष्य रखती है, उसे खंडित करने का नहीं। मानव व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है और यह प्रभाव भिन्नता का कारण हो जाता है। परंतु भाषा संबंधी बाह्य भिन्नताएं पर्वत की ऊंची नीची अनमिल श्रेणियां न होकर एक ही सागर तल पर बनने वाली लहरों से समानता रखती हैं। उनकी भिन्नता समष्टि की गति की निरंतरता बनाए रखने का लक्ष्य रखती है, उसे खंडित करने का नहीं। प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है जिसकी एक धारा व्यावहारिक जीवन के आदान प्रदान सहज करती है, दूसरी मानव के बुद्धि और हृदय की समृद्धि को अन्य मानवों के बुद्धि तथा हृदय के लिए संप्रेषणशील बनाती है और तीसरी अंतःलीला के समान किसी भेदातीत स्थिति की संयोजिका है। हमारे विशाल देश की रूपात्मक विविधता उसकी सांस्कृतिक एकता की पूरक रही है, उसकी विरोधनी नहीं। इसी से विशेष जीवन पद्धति, चिंतन, रागात्मक दृष्टि, सौंदर्य बोध आदि के संबंध में तत्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व को इतने विघटन धर्म विवर्तनों में संश्लिष्ट रखा है। धरती का कोई खंड नदी, पर्वत, समतल आदि का संघात कहा जा सकता है। मनुष्यों की आकस्मिक रूप से एकत्र भीड़ मानव समूह की संज्ञा पा सकती है, परंतु राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए भूमिखंड विशेष की ही नहीं, एक सांस्कृतिक दाय भाग के अधिकारी और प्रबुद्ध मानव समाज की भी आवश्यकता होती है, जो अपने अनुराग की दीप्ति से उस भूमिखंड के हर कण को इस प्रकार उद्भासित कर दे कि वह एक चिरनवीन सौंदर्य में जीवित और लयवान हो सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिम किरीटनी भारत भूमि ऐसी ही राष्ट्र प्रतिमा है। ऐसे महादेश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है, किंतु उनमें से प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे सधे तार के समान रहकर ही सार्थकता पाती है, जो रागनी की संपूर्णता के लिए ही अपनी झंकार में अन्य तारों से भिन्न है। सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी चिंतना तथा भावना की उपलब्धियों से राष्ट्र जीवन को समृद्ध किया है। उनकी देशगत भिन्नता उनकी तत्वगत एकता से प्राणवती होने के कारण महार्घ है। ज्वाला धरती की गहराई में कोयले को हीरा बनाने की क्रिया में संलग्न रहती है और सीप जल की अतल गहनता में स्वाति की बूंद से मोती बनाने की साधना करती है। न हीरक धरती की ज्वाला को साथ लाता है, न मुक्ता जल की गहराई को, परंतु वे समान रूप से मूल्यवान रहेंगे। हम जिस संक्रांति के युग का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसमें मानव जीवन की त्रासदी का कारण संवेदनशीलता का आधिक्य न होकर उसका अभाव है। हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिक प्रतंत्रता का ऐसा ग्रंथिबंधन हुआ है जिसे न हम खोल पाते हैं न काट पाते हैं। परिणामतः हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है। अतीत में हमारे देश ने अनेक अंधकार के आयाम पार किए हैं, परंतु इसके चिंतकों, साधकों तथा साहित्य सृष्टाओं की दृष्टि के आलोक ने ही पथ की सीमाओं को उज्ज्वल रखकर उसे अंधकार में खोने से बचाया है। भाषा ही इस आलोक के लिए संचारिणी दीपशिखा रही है, पावकः न सरस्वती। दोस्तों, ये था महादेवी वर्मा का निबंध भाषा का प्रश्न। भाषा का प्रश्न हमेशा ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण सवाल रहा है। अनेक दृष्टियों से, अनेक प्रकार से साहित्यकारों ने भाषा के ऊपर चिंतना की है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये निबंध पसंद आया होगा, आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और निबंध के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।